विश्वानिदेव सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व योगनम धन संपत्ति च प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकम अपि अनर्थाय किं अतः चतुष्टयम्। यौवन युवा अवस्था बहुत उपयोगी भी होती है और कुमार्ग पर अगर चल जाए तो दुरुपयोगी भी होती है। युवा अवस्था में सब प्रकार की शक्तियां होती हैं, केवल कुछ बुद्धि की कमी होती है। जैसे जैसे शरीर की अवस्थाएं बढ़ती चली जाती है, वैसे ही मनुष्य का विज्ञान और अनुभव भी बढ़ता चला जाता है। युवा अवस्था अनर्थ का हेतु भी होती है अगर कुमारक पर चल जाए। मुझे तो अब अपनी जवानी याद आती है, कहीं ये विज्ञान जो अब अध्ययन कर रहा हूं, कहीं उस वक्त पढ़ना होता तो वैसे तो कई जन्म चाहिए थे, पर एक ही मार्ग पर लगा रहा, एक ही रास्ते पर चलता रहा तो जीवन की सफलता समझता। वैसे तो सब कुछ निष्फल ही साबित हो रहा है, पर दुनिया की दृष्टि में सफलता मानी जा रही है और मेरी दृष्टि में जैसा आज से 80 वर्ष पहले था वैसा ही अभी हूं, कुछ फर्क नहीं। उस वक्त छोटी दुनिया थी, छोटा विज्ञान था, छोटी जरूरत थी, छोटी सब बातें थी, उसमें भी एक प्रकार की ऐसी संतुष्टि थी, भले जिज्ञासा थी। अब इतनी आयु भी हो गई है, ज्ञान भी बहुत बढ़ा, संग्रह भी बहुत बढ़ा, और जितना संग्रह अधिक होता है उतना ही परपंच का हेतु होता है। जिसने कहते मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष नाम की चीज जो है कहते हैं, पता नहीं कैसा होगा मरने के बाद, उस वक्त हम होंगे भी कि नहीं, ऐसा पता भी होगा कि नहीं जैसा अब है। तो मोक्ष तो इसी जीवन में होना चाहिए, क्योंकि उसका अनुमान तो कर लेंगे। अगर प्रत्यक्ष कुछ मोक्ष का स्वरूप देख लेंगे जीवन में तो भविष्य का भी अनुमान किया जाएगा, भाई ऐसा या कम से कम इससे कुछ अच्छा, और इतना तो जरूर होगा ना। अगर इस जीवन में मोक्ष की बात सिद्ध नहीं हुई तो मरने के बाद जो आशा है वो महामूर्खता की बात है। तो इतने संस्कारों की गठड़ी बंध गई है सिर पर, उससे कुछ उम्र निकलता जा रहा है। जब से जीवन का स्मरण आता है इतने संस्कार अनंत जैसे कोई पर्वतों की श्रृंखलाएं बंधी हुई होती हैं कई, और अंत में जाकर चोटी होती है। ऐसे जीवन के रोज प्रतिदिन की, प्रत्येक मास की, प्रत्येक वर्ष की श्रृंखलाएं संस्कारों की अनंत इस जीवन की सामने दृष्टि में आ रही है, थोड़ी देर में आ जाती। अब जहां इतनी श्रृंखलाएं बंधी हुई हो इस शरीर के साथ और इस अंतःकरण के साथ, वहां कहीं इनसे छुटकारा हो जाए असंभव बात है। पहले तो अभिलाषा बनी रहती थी, पता नहीं वैराग होगा वैराग होगा, सब कुछ सहन करते थे, बर्दाश्त करते थे, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब कुछ सहन करते थे, अब सोचते हैं कि वो सब बेकार ही थी, अवस्थाएं थी, मूर्खता थी, उचिड्डता थी, सिर पर कोई गुरु पीर नहीं था, बेलगाम के घोड़े की तरह था, बिना अंकुश के हाथी की तरह था, ऐसा जीवन स्वेच्छा से बना हुआ था, पर कोई ध्येय था सामने, वो ध्येय वैसा का वैसा ही खड़ा, उससे और भारी बन गया। पहले युवावस्था में इतने संस्कार नहीं थे, छोटी सी दुनिया थी, छोटे से संस्कार थे, इतने संस्कारों का संग्रह हो गया, अब भगवान भी कुछ मदद नहीं करता, अब भगवान को भी दूर से नमस्कार करने की, अब ये जो प्रार्थना करता हूँ ना मैं रोज मंत्र बोल, तो तुम्हारे लिए बोलता हूँ, मेरे मन में पहले खटकता रहता भगवान ने कुछ नहीं करना कराना, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कर देता हूँ, और नहीं मुझे पहले ही जब मंत्र बोलता हूँ एक मंत्र तो अच्छा लगता है, सर्वे भवन्तु सुख सर्वे संतु, बाकी और जितने वेद के मंत्र मुझे तो निरर्थक से साबित होते हैं और मैं अपनी आत्मा के विपरीत काम करता। जब इतने संस्कार संग्रह, भगवान ने कुछ आज तक मदद नहीं करी और उन्हीं कर्मों का फल प्रयत्न के द्वारा मिलता जा रहा है, तो भगवान की क्या देन हुई इसमें बतलाओ। सोई ये भी अच्छा है, लोगों में भगवान का डर ही बंधा हुआ है, अगर ये बात समझ में आ जाए तो डर भी नहीं रहता फिर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस उद्देश्य, और फिर ये माना थोड़ी देर के लिए कि जो किया अब तक निरर्थक किया है, अगर ये भी ना करता तो फिर क्या करता, फिर भी तो कुछ करना था, जब जीवन है, जन्म है, पशु है, पक्षी है, चिड़िया है, जानवर है, मनुष्य ने जातु क्षणम अपितिष्ठति कर्म कृत, प्राणी जो है बिना कर्म के तो ठहरता ही नहीं। तो अब तो ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य जैसे एक ही समान हो, कुछ अंतर नहीं प्रतीत होता। जिनको धर्म मान करके हम कर्तव्य परायण होते हैं, अंत में जाकर वो भी अधर्म साबित हो जाते हैं, क्योंकि ये धर्म और अधर्म की भावना इन मनुष्यों ने ही बनाई हुई है, पशु पक्षी में कोई धर्म अधर्म की भावना नहीं चल रही है। ये हमें बचपन से ही ऐसी बातें माता पिता परंपरा चल रही है, जैसे भगवान का हव्वा परंपरा चलाया हुआ है, भगवान भी एक प्रकार से हव्वा ही बनाया हुआ है। हव्वा ने माता ने देखा होता बच्चे को डराती रहती है, देख हव्वा आ जाएगा, हव्वा आ जाएगा, माता ने भी नहीं देखा, कभी उसकी माँ ने भी नहीं देखा, पर परंपरा हव्वे की चली आ रही है। इसी प्रकार ये धर्म और अधर्म की परंपरा चलाई हुई है, ठीक है कि जो अयुक्त व्यवहार किया जाएगा, जैसे वो युक्तार विहारस्य आदि जो बात आती है वो तो ठीक है जीवन की, उससे शरीर ठीक चलता रहेगा, अगर उसके उसको ही धर्म मान लिया, उसको धर्म मान लिया गया है, रोटी सामने आई है, पेट में आधी हो गई है, थोड़ी तृप्ति हो गई, उस पर ही छोड़ देता हूँ, तो ये तो धर्म बन जाता है। और ठूस ठूस के बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान पदार्थ रख के भरता ही जा रहा हूँ, तो ये अधर्म हो जाता है। संतानों की परंपरा आदि के लिए गृहस्थ की एक मर्यादा बनाई है, अगर संतानों उत्पत्ति के लिए पत्नी से संबंध करता हूँ तब वो धर्म है, संतान की आवश्यकता ना हो पत्नी का सहवास करता हूं तो वह अधर्म है। तो ये धर्म अधर्म बुद्धिमानों ने कुछ वर्तमान के व्यवहार को देख करके व्यवस्था बना दी है, अगर भाई ये धर्म है ये अधर्म है, कोई भगवान की तरफ से धर्म अधर्म का इल्हाम नहीं आया है। तो ये मनुष्य समाज, क्योंकि एक की अपेक्षा एक बुद्धिमान, कुछ संसार के व्यवहार से अकल लेता रहता है, कुछ मनुष्य समाज से अकल लेता रहता है, तो ये अपने से छोटों के लिए मर्यादा, जैसे तुम्हें रोज घोट घोट करके बहरा की घोटी पिलाता रहता हूं, वैसे तुम्हारे संस्कार पनपते रहेंगे, दुनिया से भी निकम्मे साबित हो जाओगे कुछ वर्षों में। काम कर्म धर्म करने को भी, कुछ लोक संग्रह करने को भी इच्छा नहीं रहेगी। फिर गुंडे बदमाश आने के देश पर आक्रमण कर लेंगे, फिर तुमको गुलाम बना लेंगे। तो इसलिए बिल्कुल इस तरफ ही निवृत्त होकर, मैं तो निवृत्त होकर के इसी तरफ लगा हुआ हूं। मैंने लोक व्यवहार को ज्यादा नहीं किया। ये आश्रमों की भी रचना हुई आप लोगों के थोड़े सुख के लिए हो गई है। अपने अकेले जीवन तो कहीं भी जाकर बैठ करके भी कहीं बाहर भी काट सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी व्यवस्थाएं मनुष्य समाज चलाता है, और मनुष्य समाज ही अपने आप धर्म और अधर्म कायम करता है, और मनुष्य ही समाज पाप और पुण्य की व्यवस्था बनाता है। और जो कुछ करता है अपने लिए या दूसरों के लिए मनुष्य का, भगवान ने भी किया है। ये पर्वत भगवान ने बना दिए, बनाए होंगे, कभी अनुमान है हमारा कैसे बनाए होंगे तो पता नहीं, पर ये हम नहीं बना सकते। ऐसे ऐसे जो प्रधान कर्म हैं वो तो बना करके बैठ गया है, और बैठ करके इनके अंदर कर सकते हैं। बाकी जब से हम हमारी सृष्टि चली है तब से हमारा ही निर्माण संसार में चला हुआ है। हम अपने सुख और आराम के लिए सब निर्माण करते चले जाते हैं। हाँ, ये परंपरा, क्योंकि जहां हमारी पेश नहीं जाती, जिसको हम करने में असमर्थ होते हैं, वहां भगवान का आश्रय ले लेते हैं। टूटे हुए, भज्जे हुए, मरे हुए, कमजोर, नपुंसक बनकर भी, जब तक बल शक्ति आदि, भगवान की भी परवाह नहीं करते, किसकी भी, मनुष्य की भी परवाह नहीं करते, सबकी परवाह करते। सो कहने का तात्पर्य ये है, ये हम स्वयं ही अपने लिए जाल और बंधन बनाते हैं, और स्वयं ही उसमें फंस जाते हैं रेशम के कीड़े की तरह। था मैं शरीर कर्मों के साथ संघर्ष करता है, लड़ता है, करता है, और वृद्धावस्था में बुद्धि में जवानी आती है, इसका संघर्ष चलता है संसार के साथ में। जैसे युवावस्था में शरीर का संघर्ष संसार के कार्यों के साथ में चलता है, ऐसे ही वृद्धावस्था में जब शरीर की सब शक्तियां क्षीण सी हो जाती है, बुद्धि की शक्ति नहीं पड़ती है। अब जितने मनिष्टर बने हुए हैं 50 साल से, सब ऊपर के जवान कोई थोड़े ही, और वो बुद्धि के द्वारा ही सब शासन कर रहे हैं, और मूर्खों को कट्ठे कर कर करके युद्ध में भट्टी की तरह झोंक करके, जैसे भट्टी में कोई ईंधन झोंका करता, ऐसे नौजवानों को मरवा देते लड़ा करके। क्योंकि युवावस्था में बुद्धि का अभाव होता है, शारीरिक बल होता है। अगर है जैसा बल युवावस्था में मेरे अंदर था, और अब बुद्धि का बल, कहीं वो बल भी अब होता तो बहुत काम करने की शक्ति होती शरीर में। अब तो बातें बनाने की शक्ति रह गई, जबान मन घड़ंत, वो बल शक्ति पराक्रम आदि अब नहीं रहे, जबकि बुद्धि का अभाव था तब थे। तो उस वक्त मनमर्जी के, तो कहते हैं कि यौवनम युवा अवस्था जो है ये भी अनर्थ का हेतु होती है, और धन संपत्ति धन ऐश्वर्य भी पास जब आ जाता है तो ये भी कुमारग में प्रवृत्त करता है। शराब, मांस, दुराचार आदि, दूसरों को तंग करना, सताना आदि, हुकूमत करना, ये बातें सब। तो धन अनर्थ का हेतु भी होता है, और धन गरीबों के उपकार के लिए, अस्पतालों के लिए, रोगियों के लिए, निर्धनों के लिए, अगर उस धन का सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य के कल्याण का हेतु भी होता है। युवावस्था दूसरों की सेवा के लिए अगर जीवन लगाया जाए तो कल्याण का हेतु होता है, वरना ये अनर्थ का हेतु होती है युवावस्था। युवावस्था में ज्यादा विवेक न होने से अनेक अनर्थ करने में प्रवृत्त हो जाता है युवावस्था। अब मैं यहां हारवन में रहा करता था, युवावस्था की बल शक्ति पराक्रम का शरीर में, जंगली पशुओं को जानबूझ करके अपने मनोरंजन के लिए यहाँ शेर होते थे, भालू बहुत होते थे, सुअर जंगली, अपने मनोरंजन के लिए, मेरे लिए तो खेल तमाशा था वो। अब क्यों नहीं तू करता? अब एक एक प्राणी को अपने जैसा आत्मा समझ के रक्षा करने की भावना पैदा होती है। उस वक्त दूसरों को तंग करने की भावना में मजा आता था, बुद्धि का अभाव था ना, मस्तिष्क में बुद्धि नहीं थी, पशुओं में रहकर पशुओं जैसे व्यवहार करने लगा था। सो इसलिए ये युवा अवस्था जो है, कहते जहां युवा अवस्था और मूर्खता हो वो भी अनर्थ का हेतु होती है, और जहां धन हो और मूर्खता हो वो धन भी कुमारक का हेतु होता है, दुराचार में जुए में लग जाएगा। बदमाश लोग धनी को देख करके फंसाने की कोशिश करेंगे, जुआ खेलने लगेंगे, शराबी लोग अपनी पार्टी बढ़ाने के लिए उसको मिलाने लगेंगे, सारे अनर्थ है वह धन इकट्ठा करने लगेगा। फिर अगर किसी सुलझे हुए आदमी के पास धन है तो लोकोपकार के लिए, किसी बुद्धिमान के पास जवानी है तो लोकोपकार लोक सेवा के लिए उसकी जवानी लगेगी, अपनी उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, समाज की उन्नति के लिए लगेगी। बुद्धिमान के पास अगर धन है तो अपने सुख और आराम के लिए लगेगा, देश और जाति और समाज के लिए आराम और सुख के लिए उसका धन है। धन संपत्ति प्रभुत्व और हकूमत हो और मूर्खता हो, राजा हो अगर वो मूर्ख हो तो प्रजा को भी दुखी करेगा, दूसरे देशों को भी दुखी करेगा और आप भी दुख प्रवेश पाएगा। प्रभुत्व हकूमत जो है ये बुद्धिमानों के पास में होनी चाहिए, बुद्धिमान मिनिस्टर होंगे, राष्ट्रपति होंगे तो देश को अच्छी दिशा में ले जाएंगे। अगर मूर्ख राजा होगा, मूर्ख मिनिस्टर होगा, अब चुनाव का सिलसिला चल पड़ा ना, मूर्ख भी आ जाते हैं इसमें। मूर्खों के पास अगर धन होता न पड़ोगे किसी कारण से आ जाता है, चोर डाकू भी आ जाते हैं। तो चुनाव का जो सिलसिला चल पड़ा है, ये लोगों को रिश्वत दे दे करके वोट इकट्ठे करते रहते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, महादुराचारी, महाशराबी, महातबादी, सारे अनर्थ इनके अंदर होते हैं, पराया कोई व्यक्ति होगा जो अच्छा होगा। तो कहने का तात्पर्य, प्रभुत्वम हकूमत जो हो बुद्धिमान के पास हो, देश को, जाति को, मनुष्य को अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, देश को उन्नत करेगा, देश को समृद्धिवान बनाएगा। और मूर्ख जो होगा वो आप व्यसनों में पड़ के, दुराचारों में पड़ करके, शराब कबाब आदि, जुए आदि में पड़ करके आप भी तबाह होगा और देश को भी अनर्थ की ओर ले जाएगा। अविवेकिता अंतिम एक और बात बतलाई है कि अविवेक कहते मूर्खता है। तो मूर्खता, ये मूर्खता हो, जवानी हो, धन हो और हकूमत हो, और फिर वहां मूर्खता भी हो, कहते वो तो विनाश की ओर ही ले जाएगा, आप भी विनाश की ओर जाएगा। तो प्रभुत्वम एक ही कम अपि अनर्था है, इनमें एक जवानी ही कलेश का हेतु होती है, दुख का हेतु हो सकती है, अकेला धन ही हो किसी के पास और दुख और कलेश का हेतु बन जाता है। तो जहां ये चारों इकट्ठे होंगे, जिस मनुष्य में जवानी भी हो और मूर्खता भी हो और हकूमत भी हो और धन भी हो, ये जहां चारों इकट्ठी हो जाए, कहते कीमत है चतुष्टयम, उस आदमी का क्या कहना, हो तो विनाश भाव कोई प्राप्त होगा। वर्तमान में और इस मानव जीवन में ये चार साधन जिसके पास होंगे उसके पास होगा सर्ग, युवा अवस्था, धन, हकूमत और विवेक। जिसके पास ये चार होंगे तो उसके लिए स्वर्ग होगा और बाकी सबके लिए नरक ही रहना है। यहाँ रिडकते रहेंगे, रोते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे।